मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम आतिफ ऑन सनराइज। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं मोहम्मद आतिफ की आवाज FM 96 साहिवाल की पावर वेव्स पर और वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद में FM सनराइज 96 के स्टूडियो से हमारे साथ हैं आज बिलाल जट। बिलाल, वेलकम टू द शो।
अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो आपको बता दूं, साहिवाल है, फैसलाबाद नहीं है।
ओए, क्यों फैसलाबाद? अच्छा, पता है हुआ क्या? मुझे याद आ गया,
मुझे भी याद आ गया आपने फैसलाबाद क्यों कहा है।
मुझे याद आ गया मैंने फैसलाबाद क्यों कहा है। ये जो शहजाद साहब है ना, इन्होंने मुझे 2-3 रोज पहले एक बहुत ही आला आइटम सुनाया फैसलाबाद का, तो उसकी वजह से ना दिमाग दिलो दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद छाया हुआ है। वो आइटम क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज के प्रोग्राम में जी हमने सोचा ये कि कुछ ऐसा म्यूजिक है और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मिटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिनके बजाने वाले कम होते जा रहे हैं और ये साज बनना भी बहुत कम हो गए हैं। यानी अब जो बन भी रहे हैं उनका स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा नहीं है, साज इतना अच्छा नहीं बन रहा। और ये क्लासिकल साज हैं, ये वो साज हैं जो बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे वेस्टर्न साज तो जितने भी हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक साज हैं, वो सारे बड़े पैमाने पर उनकी प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन ये जो चंद साज हैं जो क्लासिकी मौसीकी के साज हैं, जो क्लासिकी मौसीकी में इस्तेमाल होते आए हैं बरे सगीर में कई सदियों से, ये साज अभी भी बहुत सारे लोग अपने हाथ से बनाते हैं। यानी एक एक चीज़ अलहदा से कलेक्ट करके एक हुनरमंद उस साज को बनाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सारंगी पर बात की जाए। सारंगी बहुत ही खूबसूरत साज है, इसके बारे में इसके बारे में हमने सोचा कि बात की जाए। और चूंकि ये साज ख़त्म होता जा रहा है, मादूम होता जा रहा है, इसके बजाने वाले गिने चुने हैं, यानी इतने कम हो गए हैं कि उनको अब उंगलियों पे गिना जा सकता है, तो सोचा ये कि इसलिए इससे बात की जाए, इस बारे में बात की जाए। और कोशिश करेंगे कि कुछ जो मॉडर्न सिंगर्स हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि आजकल फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनसे बात करेंगे कि ये फ्यूजन में और कमर्शियल म्यूज़िक में क्या सारंगी को डाला जा सकता है, या अगर नहीं डाला जा रहा तो क्यों नहीं डाला जा रहा। और फिर हम एक पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज सारंगी प्लेयर हैं, उस्ताद जुहेब हसन खान, उनसे भी बात करेंगे। और उस्ताद जुहेब हसन खान हमारे साथ, वो आजकल अमेरिका में हैं, और उनसे हमने इस बारे में बात करनी है, जुहेब हसन खान से भी, उनसे भी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। और उस्ताद जुहेब हसन खान के बारे में आपको ये भी बता दें कि उस्ताद जुहेब हसन खान उस्ताद हुसैन बख्श अमृतसरी के पोते हैं। उस्ताद हुसैन बख्श अमृतसरी एक बहुत बड़ा नाम है सारंगी प्लेयर्स की, जब भी बात की जाती है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। और ये अमृतसरी घराने से ही जारी बात है इनका ताल्लुक़ है, जिसमें उस्ताद नत्थू खान भी थे। इसके अलावा उस्ताद पीरू खान का नाम बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद अब्दुल हमीद खान रहे हैं, उस्ताद खावर हुसैन रहे हैं, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बड़ा बड़ा जिन्होंने काम किया है। और इससे पहले उस्ताद फ़तेह दीन जो कि 18वीं सदी के सरंगी नवाज थे, माफ़ कीजिएगा 19वीं सदी के सरंगी नवाज थे, और फिर 20वीं 20वीं सदी में जो बाकी बड़े नाम रहे हैं अमृतसरी घराने के, उनके भी हमने नाम लिए हैं। कुछ कमर्शल सारंगी प्लेयर्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने सारंगी को ज़रा पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा आम किया है, कमर्शियल लेवल पर वो सारंगी को लेकर आए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज बिलाल हमने बात करनी है, और हमारे सुनने वाले जो हैं उनकी भी इनपुट हमें चाहिए होगी इस मौजू पर, आज के टॉपिक पर। और बिलाल, एक मैसेज है जो प्रोग्राम में लाजमी शामिल करना है। ये मैसेज फेसबुक पर आया था, और हमने एक प्रोग्राम किया था उसके बारे में, हमारे एक बहुत ही मोहतरम सुनने वाले हैं मोहम्मद जीशान खान साहब, इन्होंने ये मैसेज किया, और बड़ा डिटेल्ड मैसेज है, और बहुत खुशी हुई मुझे ये मैसेज पढ़ के कि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग डिबेट्स होती हैं हमारे लिसनर्स के ज़रिए भी हमारी। तो मोहम्मद जीशान साहब ने लिखा है जी, सलाम वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने लिखा है कि आज सुबह का एक रिपीटेड प्रोग्राम एफएम 96, यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनका कहने का मकसद यह है कि ये प्रोग्राम एफएम 96 पे चला था और रिपीट हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो नशरियात पर। कहते हैं यकीन करें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बेशक ये सारी कमजोरियां हमारी हैं जो आपने एक एक करके बताई। और ये प्रोग्राम था जी, हमने अदम बर्दाश्त पर एक प्रोग्राम किया था कि क्यों इतनी इंटॉलरेंस क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर। उस पर इन्होंने ये कमेंट किया है कि हम पाकिस्तानी लोग छोटी छोटी बातों पर कत्ल भी कर देते हैं, कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते। और ये रोमन में लिखा हुआ है इसलिए मुझे पढ़ने में ज़रा दुश्वारी होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये सब दुरुस्त है, लेकिन कभी आप लोगों ने हमारी पॉजिटिव बातों को इतना हाईलाइट नहीं किया। वो इसलिए भी कि आप यूएसए में बैठे हैं, जो हकीकत है मैं यूएसए में बैठा हूं, लेकिन आपकी पहली बात से मुझे इत्तफाक नहीं है। तफसीली जवाब मैं इसके बाद दूंगा, पहले मैं आपका मैसेज पूरा पढ़ दूं। जिन्होंने मुस्लिम दुनिया का सकून तबाह बर्बाद किया है, आई लव पाकिस्तान, मुझे फिक्र है अपने मुल्क पे, मुझे फख्र है अपने मुल्क पे, अपने कल्चर पे, अपनी हिस्ट्री पे, अपनी बहादुर पाकिस्तानी अवाम पे, कि 9/11 के बाद हर तरह की मुश्किलात को बहादुरी के साथ फेस कर रहे हैं। पर्सनली मैं खैबर एजेंसी से बिलोंग करता हूं, वहां के हालात का भी आपको ज़रूर मालूम होता होगा। जी बिल्कुल मालूम होता है, और चूंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे न सिर्फ खैबर एजेंसी बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं उनके बारे में अपडेट मेरे प्रोफेशन की वजह से भी मिलती है, मेरा इंटरेस्ट भी है। सॉरी, मैंने यही कहना था, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमेशा ज़मीर की आवाज़ पे अमल करना चाहिए। मैं एक कार्टूनिस्ट भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े पेजेस मेरा कार्टून शेयर करते हैं। और ज़िशान साहब, मैंने आपके कार्टून्स देखे हैं और मैं आपके कार्टून्स की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, आपके कार्टून्स में वो सोच छलकती भी है। मेरी ख्वाहिश होती है कि दुनियावी मफाद से ज़्यादा कौम के मफाद का एहसास करूँ। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद ज़िशान खान साहब, जर्नलिज्म का पहला असूल, जो जब मैंने जर्नलिज्म में नया नया कदम रखा तो उसका जो पहला असूल मेरे सीनियर्स ने, मुझे सिखाने वालों ने सिखाया था, वो ये था कि जर्नलिस्ट की का रिलेशनशिप नहीं हो सकता कोई, उसके इमोशंस नहीं हो सकते। उसका काम होता है खबरें लिखना, खबरों पर तबसरे करना और हकीकत को सामने लाना, तो उसमें इमोशंस नहीं होते बिल्कुल भी। हम आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, रहता यूएसए में हूँ लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी ही दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उन्हें वैसा ही दिखाना हमारा फ़र्ज़ है जैसी वो हैं। मोहम्मद ज़िशान खान साहब से एक और भी गुजारिश है कि वो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा होता है ऑस्ट्रिच अप्रोच, जब रेत का तूफान आता है ना तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में दबा देता है और समझता है कि सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं बुनियादी तौर पर इस अप्रोच का बहुत सख्त मुखालिफ हूँ। मेरे ख्याल में जो हकीकत है उसे फेस करना चाहिए। आपने जिस प्रोग्राम पर तनकीद की है उस प्रोग्राम में यकीनन तनकीद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो तनकीद इसलिए ज़्यादा थी कि वो सारी वजूहात वहाँ पर मौजूद हैं। मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किए, क्योंकि पाकिस्तान आना जाना होता है। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गया जी, तो वहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि वहाँ पर माशरे में छोटे से छोटी सतह से लेकर बड़ी से बड़ी सतह पर करप्शन है। कोई भी आदमी किसी को किसी भी वक्त धोखा देने से बाज नहीं आता। बहुत सुना करते थे हम लोगों से कि अब तो यार वो पेट्रोल भी देख के डलवाना पड़ता है, कि वो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, पेट्रोल कम डालते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ। हमारे पास, मैं वहाँ पर, ज़ाहरी बात है मैं तो यहाँ रहता हूँ, तो वहाँ किसी की गाड़ी थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, और जब मैं उसको गैस स्टेशन पर लेकर गया, तो यहाँ तो हम गैस खुद ही पंप करते हैं और ये नहीं देखते कि जितने पैसे दे रहे हैं उसी की गैस डलेगी, क्योंकि यहाँ तो हम पैसे पहले देते हैं और गैस बाद में पंप होती है, क्रेडिट कार्ड रीडर्स मशीन्स होती हैं, या हम जो कैशियर क्लर्क होता है उसको जाके पैसे दे देते हैं कि इतने पैसों का, इतने नंबर का जो पंप है उससे हम पंपिंग करना चाहते हैं। तो वहाँ पे चूंकि पेट्रोल पंप्स के ऊपर लोग खड़े होते हैं जो कि मदद देते हैं तमाम हजरात को जो वहाँ पर पेट्रोल डलवाते हैं आते हैं उन्हें, तो हम भी इसी तरह गए। हमने गाड़ी वहाँ पार्क की और कहा जी कि टैंक फुल कर दीजिए। टैंक फुल हो गया। अब जाहिर बात है वहाँ पर मैं तो वहाँ मेहमान था, मुझे नहीं पता था कि क्या रेट है क्या नहीं है। उसने जितने पैसे मांगे मैंने उतने पैसे दे दिए और फिर मैंने रेट भी देखा कि पेट्रोल का रेट क्या है। उसके बाद चूंकि एक वो होता है ना, जब आपको ये पता होता है कि कहीं धोखा नहीं होगा तो फिर आप पैसे
जी
गिनते
बिल्कुल
नहीं हैं, और मैं इसी कॉन्फिडेंस में था कि ये जितने पैसे बता रहा है इतने ही पैसे होंगे, ज़्यादा तो नहीं बता रहा, और मैंने उसको गिना नहीं। बाद में जब मैं चला गया तो ऐसे ही मैंने सोचा कि पेट्रोल तो इतने रुपए लीटर था, इस हिसाब से अगर मैंने इतना पेट्रोल डलवाया है तो उसके इतने पैसे होने चाहिए, जबकि उस आदमी ने मुझसे 2,500 रुपये ज़्यादा ले लिए।
क्या बात
अब
है
जब मैं वापस गया वहां पर तो मैंने उसके मैनेजर से बात की और मैंने वहां जाके पूछा जी मैनेजर से मुझे मिलवाइए। मैं स्टेशन के मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ पर आया था और मैंने पेट्रोल डलवाया था, इतने लीटर पेट्रोल डला था, उसके इतने पैसे बनते हैं, जो साहब वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने मुझसे इतने पैसे लिए। उन्होंने कहा जी आप उन साहब को पहचान लेंगे? मैंने कहा जी मैं पहचान लूंगा, वो साहब इत्तेफाक से वहीं थे। मैंने कहा जी ये साहब थे जिन्होंने मुझसे ये इतने पैसे लिए? और उन साहब ने कहा नहीं जी मैंने तो नहीं लिए। अब मैनेजर ने कहा जी कि अगर कोई 100-200 रुपए की बात हो तो मैं मान भी लूं जी, आप 2,500 कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर उतने में आपको पता है मजमा लगना शुरू हो जाता है। तो मैंने उन साहब को कहा देखिए जी मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने तो आया नहीं, मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मैनेजर हैं, आपने शाम को कैश गिना होगा, अगर उसमें 2,500 रुपये ज्यादा थे तो वो मेरे हैं, अगर नहीं थे तो वो इन साहब की जेब में है।
आप बिल्कुल ऐसे
और इतने में फिर और बातचीत शुरू हो गई। तो जब दोनों ने मानने से इनकार कर दिया तो मैंने कहा जी अच्छा अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं हाथापाई तो आपसे करूँगा नहीं 2,500 रुपए की खातिर। और
बिल्कुल
बाकी जहाँ तक मामला है आदमी की बेईमानी का, तो वो अब लोगों के सामने मानने से इनकार करे तो मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि पैसे मैंने ज़्यादा दिए हैं। अच्छा जी
बिल्कुल
इसके बाद आप देखिए, जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपके साथ क्या होता है, जब आप एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं तो आपके साथ क्या होता है। हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि हम साफ ही हैं, जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई देखो ये हमारा प्रोफेशन है, आप ये बात गलत कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसलिए लोग डर जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि बेचारे यहाँ मजदूरियाँ करते हैं, कभी आप उनकी स्टोरीज सुने कि एयरपोर्ट्स पे उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, जब वो यहाँ बेचारे दिन रात एक करके पैसे कमाते हैं अपने खानदान वालों के लिए, और कभी साल 2 साल 3 साल 4 साल जब जिसको मौका मिलता है वो मिलने जाता है। जब मिलने जाता है तो जाहिर बात है हमारे यहाँ एक रिवाज है कि तोहफे तहाइफ लेके जाने होते हैं, एक ये भी बड़ा फरसूदा सा रिवाज है बाय द वे। वहाँ जब कस्टम्स पे वो उतरते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि इतने पैसे दोगे तो बक्सा इसी तरह ले जाओ, नहीं दोगे तो हम बक्सा खोलेंगे और फिर जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ये बात अब आप अगर ये कहते हैं कि हम इस बारे में बात ना करें, अच्छा जी अच्छी बातों के बारे में आपने कहा कि हम बात नहीं करते,
जी बिल्कुल
हमने बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बातें की हैं। हमने जब भी प्रोग्राम किया है अपने मुल्क के अंदर बदमनी पर, तो हमने सबसे बड़ी बात ये की है कि हमारी कौम हर तरह से काबिल सताइश है। अगर किसी
जी
और
बिल्कुल
मुल्क में इतने हालात ख़राब होते तो वहाँ बाकायदा खाना जंगी शुरू हो चुकी होती है, और हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हैं। अब देखिए यमन में क्या हो रहा है, दो
बिल्कुल
फिरकों
ऐसे
के अंदर लड़ाई जो है वो अब बाकायदा एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान में हर फिरके के ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है, लेकिन हम इतने ज़्यादा मजबूत हैं एज अ कौम कि हम कभी भी इस तरफ हमारी सोच ही नहीं जाती कि पाकिस्तान में कभी सिविल वॉर होगी, खाना जंगी होगी, और हमने हर मौके पर इसकी सताइश की है। जहाँ तक ताल्लुक है 9/11 का और ये कहना कि अमेरिका ने मुस्लिम दुनिया का सुकून तबाह किया हुआ है, तो मैं एक बड़ी एग्जाम्पल दिया करता हूँ हमेशा। जीशान साहब अब उम्मीद है आप सुन रहे होंगे, आप एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ पर ये पुलिसिंग भी खुद ही की जाती है, विच इज़ रॉन्ग मेरे ज़ाती ख्याल में, वो बहुत ही अजीब सी बात है कि पुलिसिंग भी वहाँ पर लोग खुद ही करते हैं, हिफाजत भी खुद ही करते हैं, बंदूकें भी खुद ही चलाते हैं। उसके भी कुछ जाहिर बात है वजूहात हैं, हम उन वजूहात के बारे में भी कभी बात कर लेंगे। एक शख्स हो जो मेरे हमसाए के घर में रह रहा हो और हमसाए के घर से निकल के रोज़ाना मेरे घर पर पत्थर फेंके, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा अपने हमसाए से कहूँगा कि भाई आपके यहाँ ये आदमी है, ये मेरे घर पर पत्थर फेंक रहा है, तो आप इसको रोकिए। अगर मेरा हमसाया नहीं रोकेगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगी? मेरे पास यही ऑप्शन होगी कि मैं जवाब दूं, पत्थर तो नहीं खाऊंगा रोज,
बिल्कुल
तो यही है 9/11 की सारी कहानी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी इट वॉज एन इनसाइड जॉब। जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो जितनी ज़्यादा फैलाई जाएं उतनी ज़्यादा फैलाई जा सकती हैं, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि चीज़ों को अगर इस तरह से देखा जाए, देखिए हम जब हर सतह पर ये सोचने की कोशिश करते हैं ना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, तो मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि इस्लाम खतरे में है। भाई वो मज़हब जिसके फैलाने में, जिसको फैलने में सदियाँ, एक मज़हब की भी ज़िंदगी है ना, कई सदियाँ ये मज़हब आगे बढ़ा है और ऐसे ऐसी जगहों पर गया है जहाँ पर इसका कोई नाम लेवा ना था। उस मज़हब को किसी से ख़तरा नहीं हो सकता, उस मज़हब के पैरोकारों को किसी से ख़तरा नहीं हो सकता। ये जो वो ये कह लीजिए कि ये इस्लाम और कुफर की जंग और ये वो, ये मैनिपुलेट करने के लिए इस किस्म की बातें इस्तेमाल की जाती हैं। बहरहाल ज़ीशान साहब, आपने ये भी लिखा था कि आपको मेरा नाम बहुत अजीज़ है क्योंकि आपके बेटे का नाम मोहम्मद आतिफ आफरीदी है। मुझे ये जानकर खुशी हुई और कि मेरा हम नाम भी है कोई इस इलाके में जहाँ से आपने मुझे ये ईमेल भेजी है। और एक मरतबा फिर ये कहना चाहूँगा कि सहाफ़ी जो होता है ना उसके इमोशंस नहीं होते, तो अगली मरतबा जब आप कभी भी कोई काम करने जा रहे हों तो बग़ैर इमोशंस के कभी काम करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा वो काम कैसा आता है। बहुत ही लंबी गुफ्तगू हो गई। मैं चाहता तो ये था कि पहले आपके लिए एक सारंगी का एक आइटम प्ले किया जाए, लेकिन चूंकि ये ज़ीशान साहब के इस पत्र का जवाब देना बड़ा ज़रूरी था इसलिए वो जवाब दिया। और अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जी उस्ताद ज़ुहैब हसन खान साहब। ज़ुहैब साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वेलकम टू द शो, वेलकम टू VOA एंड FM सनराइज 96 साहिवाल। क्या क्या हाल हैं आपके, कैसे मिजाज?
मैं ठीक ठाक हूँ आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे कॉल करने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए इस लाइव शो में।
ज़ुहैब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका आए हुए हैं, हमें इस बात की भी बहुत खुशी है। ज़ुहैब साहब बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं सीधा जाना चाहता हूँ सारंगी से मुतल्लिक सवालात पर। सारंगी पाकिस्तान में दम तोड़ती जा रही है,
न सिर्फ दम तोड़ चुकी आतिफ भाई, दम तोड़ चुकी, पानी सब से कब का गुजर चुका।
दुरुस्त कह रहे हैं आप ज़ुहैब साहब। क्या सारंगी के दम तोड़ने की वजह ओवरऑल जो क्लासिकी मौसीकी से हमारा हमारी अटैचमेंट ख़त्म होती गई ये है, या कि फिर सारंगी को उस तरह से जिस तरह से क्लासिकी घरानों में आगे अपने नस्लों को ट्रांसफ़र होता रहा सारा फ़न, सारंगी को इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया गया?
हाँ ये भी एक बात है कि 19 में सारंगी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी आगे अगली नशिस्त में, अगली जनरेशन में। जैसे कि मेरे डैड जो थे वो बैंक ऑफिसर थे
जी,
मेरे दादा ने उनको नहीं सिखाई, लेकिन उस वक्त के जितने भी सारंगी नवाज थे पाकिस्तान के, मेरे जितने ग्रैंड अंकल थे और जो मेरे खानदान मेरी फैमिली से नहीं भी थे लोग सारंगी प्लेयर, उन्होंने भी अपने ना बेटों को नहीं सिखाई क्योंकि वो जवाल का जमाना था सारंगी पर
जी,
फ्यूचर नहीं था। अभी भी लोग फ्यूचर से डरते हुए इधर नहीं आते कि क्या फ्यूचर होगा हमारा अगर हम सारंगी सीखेंगे, इसको लाइफ टाइम देंगे अपना पूरा, तो फिर जाके ये हल होती है।
जी हाँ, क्योंकि सारंगी एक बहुत ही मुश्किल साज है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल साज है। और बल्कि ज्यादातर ये कहा जाता है कि सारंगी अगर सीखनी हो तो बचपन से ही सीखी जाती है, तभी आप सारंगी में महारत हासिल कर सकते हैं।
ऐसे ही मैं आपको इस पर एक जोक भी सुनाता हूँ
जी,
कि एक जज साहब के पास दो मुलजिमान आए, फांसी की सजा हो चुकी थी उन्हें
जी,
तो वो थे बड़े चलाक
जी,
तो उन्हें कहा गया कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपको फांसी हो जाए होने वाली है। तो उनमें से एक ने कहा कि जी मैंने सारंगी सीखनी है।
अच्छा।
डायरेक्टर साहब ने पूछा कि सारंगी में कितने साल लगेंगे, तो एक म्यूजिशियन को बुलाया म्यूजिक डायरेक्टर को, उसने कहा जी 20 साल से तो कम नहीं लगेंगे। वो कहते जी चलो ठीक है, अब ये मरने वाले की ख्वाहिशें पूरी तो करनी है, अब दूसरे वाले से पूछा अब तुम बताओ, कहना जब ये सीख जाएगा ना सारंगी तो मैंने इससे सीखनी। वो 40 साल मिल गए उनको जिंदा रहने के लिए।
दुरुस्त कह रहे हैं आप, वाह 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 वाह, बहुत ही आपने इंतहाई संजीदा माहौल को बहुत ही लाइट कर दिया है अपने बहुत ही खूबसूरत लतीफे से। तो ज़ुहैब साहब मैं बल्कि एक और भी बात अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ख्वाजा नजमुल हसन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शंस के हवाले से। मैंने उनके साथ काम किया हुआ, डायरेक्टली उनके साथ तो काम नहीं किया हुआ, लेकिन मैं पीडी वर्ल्ड में काम करता था उस दौरान। वो म्यूजिक के शोज करते थे और उसमें जाहिरी बात है पाकिस्तान के बड़े बड़े मौसीकी के नाम वहाँ आते थे। तो इसी तरह एक दिन बैठे हुए थे तो उनके म्यूजिक शोज के एक एडिटर थे तारिक साहब, उनसे हमारी बड़ी गपशप थी, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श के बारे में एक बात सुनाई हमें कि उस्ताद हुसैन बख्श एक मरतबा एक परफॉर्मेंस के लिए अपने शहर से बाहर एक और शहर में गए हुए थे। तो रात में जब वो जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे उस कमरे से उस्ताद हुसैन बख्श की आवाज़ें आ रही थीं ऐसे जैसे वो किसी खातून से कलाम कर रहे हों। तो कहने लगे, लोगों ने बाहर बड़ी बातें बनाना शुरू कर दी कि उस्ताद हुसैन बख्श साहब क्या कर रहे हैं, एक खातून से बातें कर रहे हैं। तो कहने लगे, बहरहाल रात बीत गई, सुबह उठे तो पता चला कि उस्ताद हुसैन बख्श साहब अपनी सारंगी से बातें कर रहे थे।
अरे क्या कहने।
तो देखिए, मोहब्बत जो उनको अपने सास से जो मोहब्बत थी उसका इतना बेहतरीन इजहार इस जबानी तारिक साहब की जबानी सुनने को मिला, क्योंकि हुसैन बख्श साहब चूँकि 94 में रहलत फरमा गए थे इसलिए हमारी हमने तो उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, बस जो इमेजेस हैं उन्हीं में देखा उनको।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दादाजी थे
जी आप बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने तذکرہ भी इस खातिर किया क्योंकि वो आपके दादाजी थे, इसलिए मैं ये यहाँ पर तذکرہ करना जरूरी समझता था। वापस आते हैं साज की तरफ। एक ये भी मसला है साज में कि जैसे आपने अभी पहले बात की थी कि साज खत्म हो गया है, उसमें एक जाहिरी बात है उस मसले का एक पहलू ये है कि बजाने वाले नहीं रहे, लोग सीख नहीं रहे। दूसरा साज एक और उसका पहलू ये भी है कि ये साज बन भी नहीं रहा।
बिल्कुल ठीक बात, ये आपने बहुत गहरी इस पर नुक्ता डाला आपने। ये साज पाकिस्तान में तो बना ही नहीं, ये इंडिया में ही बना। जो हमारे पास सरंगियां थी भी ना हमारे बुजुर्गों के पास, वो वही थी जो मजीद खान साहब या बाबा बहरे खान साहब जो थे जिन्होंने सरंगियां बनाई थी अच्छी इंडिया में बिफोर पार्टीशन, ये वही वर्क कर रही है अभी भी पाकिस्तान में, नई नहीं बनी आज तक।
जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी आर्ट्स काउंसिल्स हैं जो मौसीकी पर और आर्ट के जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के जितने भी पहलू हैं उन सब पर काम कर रही हैं,
लेकिन सारंगी पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। अभी तक अगर मैंने 10-12 साल 15 साल के फ्यूचर में मैंने ये देखा है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कोई एक स्टेप भी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में। मैंने सबके साथ काम किया लेकिन सब सिर्फ बातें करते हैं, जब स्टेप लेने की वक्त आता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। सारंगी के लिए किसी के पास पाकिस्तान में वक्त नहीं है इसके बारे में सोचें। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है इस्लामिक, अगर आप इसका चेहरा देखें ना तो हजरत बाबा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने इसको मस्जिद के ऊपर बनाया है। इसका जो मस्तक है माथा है वो मेहराब और मस्जिद बनी हुई है। और ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमारे पाकिस्तान में 4 से 5 लोग रह गए हैं इसको बजाने वाले।
जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक और चीज भी मैं ऐड करता चलूं, चूंकि बाप ने इसकी हिस्ट्री की बात की है, तो सारंगी जो है ना जी, ये जैसे अभी बात हो रही थी तो कम से कम भी 5 से 6 सदी पुराना ये साज है, और इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की जबानों में सारंगी नज़र आता है हमें, दो मुख्तलिफ कल्चर्स दो मुख्तलिफ जबानों से निकलता नज़र आता है। एक इसके बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत के दो लफ्ज़ों का मिलाप है, सार और अंग का ये मिलाप है। एक और भी इसके बारे में बात कही जाती है कि ये फारसी जबान से आया है, इसमें फारसी जबान में सह और रंग यानी तीन रंगा इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मेन बड़ी स्ट्रिंग्स हैं वो तीन हैं।
वो तीन ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके भाई क्या बात है।
और फिर इसमें जो छोटी स्ट्रिंग्स हैं वो तो गालिबन 45 या कुछ
35 से 34 तक
35, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो अब ये जाहिर बात है एक पेचीदा साज है, और जैसे हमने पहले कहा कि जी इसको सीखना भी इतना आसान नहीं है। तो आप चूंकि माशाल्लाह एक ऐसे घराने से हैं सारंगी जिसकी मीरास है और सारंगी में बहुत बड़ा नाम है इस घराने का, तो अमृतसरी घराने के एक फर्द के तौर पर आप कैसे देखते हैं सारंगी को, और अपने आप को कैसे देखते हैं पाकिस्तान में सारंगी के साथ?
मैं अपने आप को इस वक्त पाकिस्तान में अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी जनरेशन थी ना उनमें दो दो तीन तीन चार चार लोग पांच पांच लोग जो अगर मेरे दादा थे ना, मेरे ग्रैंड अंकल भी, उनके कजन भी, खाला जात भी, चचा जात भी, ताया जात भी, ये सब लोग सरंगी बजाते थे। इस वक्त ये हाल है कि मैं अकेला सरंगी बजा रहा हूँ अपने खानदान में, और हमारे दूसरे घरों में सरंगियां हैं। मेरे ग्रैंड अंकल के जो मेरे कजन हैं, फर्स्ट कजन हैं, उनके पास उनके ग्रैंड फादर की सरंगी है, लेकिन कोई भी शुरू करने के लिए तैयार नहीं है।
जाहिर बात है उसमें एक रुकावट तो रोजगार की भी है ना, अगर सारंगी की डिमांड ही नहीं है तो फिर उससे वाबस्ता होकर किचन चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप हमारे साथ रहिए जुहेब हसन खान साहब, आपसे अभी गुफ्तगु मजीद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने सुनने वालों को एक जरा सारंगी का थोड़ा सा सुनने का मजा भी दिया जाए। और उस्ताद जुहेब हसन खान का ही बजाया हुआ एक गाना है जो पाकिस्तान में फिल्म बोल के लिए शबनम मजीद ने गाया था, सैया बोले ना बोले हमसे दूर नहीं जाइए, बहुत ही मशहूर फिल्म थी, शोएब मंसूर साहब ने ये फिल्म बनाई थी, ईमान अली पर ये गाना फिल्म किया गया, और इसमें जुहेब हसन खान साहब आपको सारंगी बजाते नजर आएंगे। तो आइए सुनते हैं सैया बोले ना बोले, और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इस गाने के बाद दोबारा शुरू करते हैं।
खासे से काम करके
जी सैया बोले ना बोले हमसे दूर नहीं जाएं। आप सुन रहे थे शबनम मजीद की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत धुन और सारंगी, क्या ही बात है। सारंगी नवाज जुहेब हसन खान साहब जिन्होंने सारंगी बजाई इस गाने में और अब हमारे साथ भी हैं। और जुहेब साहब, इससे पहले कि हम और सारंगी के बारे में बात करें, मैं ये भी चाहता हूं कि आप हमें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए और ये जो आपका अमेरिका का टूर है इसके बारे में भी बताइए।
मैं लास्ट ईयर भी यूएस आया था, मुझे कैनेडी सेंटर की तरफ से इनविटेशन था, इधर मैं परफॉर्म करके गया। इस साल मुझे स्पॉन्सर है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से
जी,
तो ये दोस्ती म्यूजिक प्रोजेक्ट में आया हूँ इस दफा मैं। इसमें चार पाकिस्तानी, चार इंडियन और दो अमेरिकन म्यूजिशियंस, हमने म्यूजिक बनाया इकट्ठे, दोनों बनाई चीजें बनाई, हमने वेस्टर्न म्यूजिक बजाया, उन्होंने देसी राग बजाए अमेरिकन म्यूजिशियन ने, तो ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्डिंग्स की हैं, मेरी अभी एक एल्बम रिलीज हुई है विभास के रिकॉर्ड लेबल से, तो वो ऑनलाइन bandcamp.com पे मिल भी जाएगी। उसमें मैंने दो राग और दो बड़ी जबरदस्त ट्रुमियां भी बजाई हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक एल्बम रिलीज होने वाली है जल्दी, ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन के साथ मैंने रिकॉर्ड की, और अभी मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ अपनी तीसरी एल्बम की रिकॉर्डिंग के लिए।
सही। एक चीज जो अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने में नजर आ रही है वो है फ्यूजन, वेस्टर्न म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक का, सारंगी उसमें कहीं फिट हो सकती है आपके ख्याल में, और अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही?
मेरे ख्याल में लोगों को अवेयर नहीं है अभी पाकिस्तानी लोग इतने अवेयर नहीं हुए लोग की अभी, काफी लोगों को तो पाकिस्तान में मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो जिन्होंने सारंगी पहली दफा देखी होती है, तो ऐसे हालात में आप क्या उम्मीद रखेंगे। लेकिन इतनी अच्छी वेस्टर्न म्यूजिक में इसको हम कंपोज करते हैं इसको, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए वो जहन चाहिए, वो लोग चाहिए जो इसको अपने साथ इस्तेमाल करें, और फ्यूजन बड़ा अच्छा लगता है सारंगी पर, और मैंने बहुत फ्यूजन किया। अभी मैंने हाल ही में शफकत अली खान साहब उस्ताद सलामत अली खान साहब के बेटे के साथ मैंने पोलैंड पाकिस्तान म्यूजिक विदाउट बॉर्डर के नाम से हमने एक एल्बम रिकॉर्ड की इस्लामाबाद में पोलैंड एम्बेसी में, तो वो भी अभी रिलीज नहीं है, अभी अपकमिंग आ रही है, तो उसमें आप सुनेंगे कि सारंगी और जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और वोकल है हमारा क्लासिकल वोकल, उसका क्या इंतजार, कैसा जबरदस्त और खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है, हम लगे हुए हैं कि फ्यूजन को पाकिस्तान में और सारंगी को हिट करने की कोशिश में, देखें आप कहाँ तक पहुँचते
हैं। नहीं, हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, खुदा करे कि आपकी तमाम तर कोशिशें कामयाब हों और सारंगी मज़ीद फैले पाकिस्तान में, जहां जैसे आपने जिक्र किया कि अब तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इसके बजाने वाले, और खुदा न करे कि वो दिन आए कि हम किसी बजाने वाले का नाम भी ना ले पाएं। आपसे मज़ीद बातचीत भी करनी है, लेकिन यहाँ पर हम अपने कॉलर्स को भी इनवाइट करना चाहते हैं, सुनने वालों को भी इनवाइट करना चाहते हैं कि वो अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाहें आज के मौजू के बारे में, आज के साज के बारे में, सारंगी के बारे में और क्लासिकल मौसीकी के बारे में, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0404011196। और बिलाल हमारे साथ बहुत खामोश बैठे हुए हैं। जोहेब हसन साहब, ये प्रोग्राम बयक वक्त पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जगहों पर सुना जाता है, और अमेरिका में जो वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो ट्रांसमिशन है उस पर तो सुना जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में FM सनराइज साहिवाल की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है 96, उस पर भी सुना जाता है। बिलाल हमारे साथ बड़ी देर से खामोश बैठे हैं क्योंकि मैंने इतने सवाल निकाल दिए थे कि बिलाल को मौका ही नहीं मिला, तो बिलाल अब इट्स ओवर टू यू।
नहीं, मैंने यही जरूरी समझा कि मैं चुप रहूं क्योंकि
आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे सवाल किए और डिस्कशन भी अच्छी चल रही थी, मैंने सोचा चलो मेरे नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए सारंगी के हवाले से, और वेलकम करूंगा मैं उस्ताद साहब को कि वो आए तशरीफ लाए हमारे पास, और साहिबाल की आवाम की तरफ से भी उनको मैं वेलकम कहूंगा।
जी बिलाल, बातचीत तो चलती रहेगी, और आप बिलाल अगर कोई भी कॉल इस दौरान आए तो आप हमें बिल्कुल रोक कर वो कॉल भी ऑन एयर कर सकते हैं। और जोहेब साहब, सारंगी में पाकिस्तान और भारत में बहुत सारे बड़े बड़े घराने हैं, पाकिस्तान में आपके घराने के अलावा और कौन से घराने हैं जो कि सारंगी में इन्वॉल्व्ड हैं?
हाँ, बहुत से घराने हुए हैं, लेकिन उस्ताद बहुत से नाम हुए हैं जो वक्त के साथ जो है ना वो धुंध में कहीं गायब हो गए हैं। मैं एक उस्ताद को जानता हूँ जिनके घर में अभी भी सारंगी मौजूद है, और मैं उनका जिक्र करना बड़ा मखसूस समझता हूँ इस बात को, और यहाँ पर उस्ताद गुलाम मोहम्मद खान हुए, हम उन्हें कोकी खान साहब भी निक नेम के तौर पर मेरे बुजुर्ग कहते थे और बहुत अच्छे पाकिस्तान के सबसे बड़े सरंगी नवाजों में से एक हुए हैं वो भी। उनके बेटे अख्तर हुसैन खान और उनके पोते गुल मोहम्मद वो कराची में सरंगी को कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको जिंदा रखें, लेकिन मैं इन्हीं को जानता हूँ, सिर्फ जो खानदानी लोग हैं यही लोग हैं जो अभी तक सरंगी को पकड़े हुए हैं अभी तक।
अच्छा, यंगर जनरेशन में जोहेब साहब क्या आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं पाकिस्तान में, ऐसे स्टूडेंट्स म्यूजिक के जो कि सारंगी सीखने में इंटरेस्टेड हों, जिनका ताल्लुक क्लासिकी मौसीकी के घरानों से ना हो?
ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की थी 2012 में
जी,
तो मेरे पास पूरी दुनिया में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इवन काफी मुल्कों में, इंडिया में मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं सीखने के लिए। अभी पाकिस्तान में अली शबाज जाफरी साहब मेरे से सीख रहे हैं।
अच्छा,
तो वो उस्ताद छोटे गुलाम अली खान साहब जो कसूर घराने वाले वोकलिस्ट हुए हमारे, उनके ग्रैंडसन हैं।
अच्छा जी, माशाल्लाह।
और उसके अलावा दो और लोग, इनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जुनेद आलम वो लम्स यूनिवर्सिटी में टीचर हैं।
अच्छा जी।
और अमारा जी हैं वो शी इज जर्नलिस्ट इन लाहौर। तो ये कुल मिलाकर 3 स्टूडेंट अभी मेरे पास पाकिस्तान में।
नहीं, अल्लाह करेगा ये 300 से 300 होंगे, हमारी दुआएं और कोशिशें रहेंगी हमारे साथ। मुझे, मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ जोहेब हसन साहब, कि मुझे ख़ास तौर पर सारंगी बहुत पसंद है। मैं बहुत अरसे से सारंगी का बहुत मद्दा रहा हूँ, आज भी हूँ, और जूँ ही सारंगी बजती है तो एक मुख्तलिफ माहौल पैदा हो जाता है।
बिल्कुल, क्योंकि ये इंसानी आवाज़ के सबसे करीब तरीन कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो सारंगी है
जी।
वो फीलिंग्स जो गला कह सकता है वो सिर्फ सारंगी कह सकती है, बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकता।
दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक और हम म्यूजिक थोड़ा सा और ऐड करते हैं प्रोग्राम में, एक और गाना प्ले करते हैं। हमने फ्यूजन की बात की थी कि मॉडर्न म्यूजिक के साथ सारंगी को जोड़े जाना जो है उसकी रिवायत भी डलनी चाहिए। एक बहुत पुराना इसी तरह एक गाना था जो जुनेद जमशेद साहब ने आज से तकरीबन कम से कम भी 10 साल पहले रिलीज किया था, या शायद इससे भी ज्यादा अरसा हो गया है। आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया था, आप तमाम सुनने वालों के लिए चाहूंगा कि ये ट्रैक प्ले करें। और इसमें जुनेद जमशेद ने मॉडर्न म्यूजिक के साथ सारंगी को फ्यूज किया और बहुत ही खूबसूरत एक कॉम्पोजिशन है जो मैं चाहता हूं कि अपने सुनने वालों के लिए प्ले की जाए। तो सुनते हैं जुनेद जमशेद को और वापस आते हैं आपके पास इस गाने के बाद।
बाहर में न था, लहजे में बोले रास्ते निकल आएंगे, बीती हुई बातों का बुखार धुल जाएगा, फासले से मट जाएंगे, हो आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है एक कहीं टूट जाए ना, इतने जमानों में जो लौट कर आया
जमशेद की आवाज में आपने सुना आंखों ने आंखों को जो सपना दिखाया है देखो कहीं टूट जाए ना। जोहेब साहब एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और वो सुनने वाले जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया हो उनको बताते चलें कि आज हम सारंगी के बारे में बात कर रहे हैं जी। सारंगी एक ऐसा साज है जो अब तकरीबन मादूम हो चुका है पाकिस्तान में, और चंद ही बजाने वाले इस साज के बाकी रह गए हैं, जिनमें से एक हैं जोहेब हसन खान साहब जो कि आज हमारे साथ हैं और इनका ताल्लुक अमृतसरी घराने से है। तो जोहेब साहब हमने ये देखा है कि इंडिया में सारंगी के बजाने वाले जाहिरी बात है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे नौजवान लोग सारंगी बजाते हैं। उसका एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये भी है कि नेपाल में सारंगी बहुत पॉपुलर है, हालांकि नेपाल की सारंगी पाकिस्तानी या भारतीय जो सारंगी है उससे मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी वो सारंगी के करीब तरीन साज है। और इंडिया में हमने ये देखा कि जैसे उस्ताद सुल्तान खान हैं उनको ग्लैमराइज किया गया, एक मॉडर्न लुक दे के ग्लैमराइज किया गया, जिससे सारंगी के बारे में एक तो अवेयरनेस बढ़ गई, उसकी पसंदीदगी में इजाफा हो गया क्योंकि उसको बहुत ही मॉडर्न शक्ल दे के ग्लैमराइज किया गया। तो पाकिस्तान में सारंगी को आपके ख्याल में पॉपुलराइज क्या इस तरीके से किया जा सकता है, और किया जाए तो कैसे किया जाए?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में तो वहाँ हजारों में है सारंगी नवाज
जी,
क्योंकि वहाँ लोग सारंगी से मोहब्बत करते हैं। वहाँ की मैं एक आपको छोटा सा एक वाकया मैं उसमें ऐड करता चलूँ, मेरे डैड उस वक्त हयात थे, मेरे वालिद तसव्वुर हुसैन साहब, तो वो वी पास अवे इन 2010 जनवरी 25
जी।
तो उनके वक्त की बात है कि वो इसी बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने एक न्यूज पेपर में पढ़ा कि इंदिरा गांधी जी ने इंडियन गवर्नमेंट को अपने जो स्टाफ हैं कल्चर्स के उनके उनसे पूछा कि हमारे पास कितने सारंगी, उन्होंने कहा जी हमारे पास 20 से 25 सारंगी नवाज। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि 30 सूबे हैं हमारे प्रोविजन हमारे पास सिर्फ इतने, तो उन्होंने ये लॉ अपने वहां पर इंडिया में रूल किया कि जितने लोग सारंगी सीखेंगे उनको भी पैसे मिलेंगे और उस्ताद सिखाने वाले को भी देंगे। तो वहां तब जितने भी जो मिडिल क्लास के लोग थे ना उन्होंने अपने बच्चों को सारंगी में डाल दिया कि चलो हमारी दाल रोटी ही चलती रहेगी इससे। तो उसमें ये क्या होता है कि अगर आप ऐसे भी कोई स्टेप लेते हैं ना तो उसमें भी आपको अच्छे से बहुत से लोग निकल आते हैं जो आपके तो पैसों के लिए लेकिन उनका दिल लग जाता है, उनका दिल लड़ जाता है, जिसे कहते हैं ना आग लड़ गई, तो जब लड़ जाता है ना तो फिर इंसान उस इंस्ट्रूमेंट को चाहे पैसों के लिए सीखना शुरू करता है, फिर वो उसको अपनी जिंदगी बना लेता है। तो ऐसे भी इंडिया में बहुत हमें अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं।
सही सही, यानी जो जो हुकूमती सरपरस्ती है वो
इस जरूरी है, उसके बगैर तो नामुमकिन है,
मादूम होते साज के लिए बहुत जरूरी है। आप दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि जाहरी बात है पेट की आग तो हर किसी को बुझानी है, और आप काम चाहे जो भी कर रहे हो पेट मौसीकी से नहीं भरता, पेट को तो खुराक चाहिए।
और सुल्तान खान साहब जो है ना उनको बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट अपने म्यूजिशियन को बड़ा प्रेराई देती है, जैसे कि मैंने लाहौर अवारी होटल में एक प्रोग्राम अटेंड किया
जी,
हरिप्रसाद चौरसिया साहब फ्लूट प्लेयर आए इंडिया के
जी जी,
तो उन्हें पर्सनली किसी ने इनवाइट किया हुआ था, लेकिन हमने क्या देखा उधर के वहाँ इंडियन एम्बेसी को पता चला कि हरिप्रसाद आए हैं, तो वो किसी और के गेस्ट हैं, किसी और ने उनको बुलाया, लेकिन इंडियन एम्बेसी खुद इन्वॉल्व होगी, वो खुद अपनी वो स्टेटस लेकर उधर पहुंच गए, उन्होंने उन्हें वेलकम किया वहाँ, इंडियन परचम और ये वो सब समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो बड़ा प्रोटोकॉल करते हैं वो अपने आर्टिस्ट के साथ। और इंडिया में सारंगी नवाजों को भी ऐसे ही मौका मिला है कि जितने भी अच्छे प्रोग्राम बाहर के मुल्क में जाते हैं सब आप ये देखिए, आप अपना कौन सा कल्चर बाहर की दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। हम आजकल पता क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ से पाकिस्तान से ढोल वाले भेजते हैं, बैंड भेजते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। कल्चर देखते हैं, जब हम भी ये सोचेंगे ना कि हमने अच्छा तबले वाला, अच्छा सारंगी वाला, अच्छा सितार वाला भेजना है अपने कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो खुद ही इम्प्रूव भी करेंगे। क्योंकि हमें पता होगा कि यार मैंने इस मंथ में जाके ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना है और अपने मुल्क के लिए करना है, तो फिर मैं भी कुछ कोशिश करूंगा।
सही सही। लेकिन एक जो आपने अभी ये बात की ना कि वो पाकिस्तान से अब ढोल वाले और वेस्टर्न म्यूजिशियन जाते हैं बाहर के दौरों पर,
यही होता है
जी जी, उसकी वजह एक ये भी है कि पॉपुलराइज हो गया है ना वो ढोल और हम सारंगी को।
एक बंदे के लिए मैं ये भी कहता होता हूँ अक्सर कि वैकेंसी, आपने लाहौर में एक सारंगी वाला, मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, कराची में एक है
जी,
इस्लामाबाद में एक है। अब एक एक लोगों के लिए वैकेंसी निकालना बहुत आसान है
जी।
अभी तक किसी भी जो है ना शोबे में नहीं किया गया। अगर इतना बड़ा ताइफा जा रहा है, 28 लोग जा रहे हैं, तो उनमें एक सितार सरंगी तबले वाला ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप करें प्रेजेंट जो चीज पॉपुलर है, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके ना लोगों को दिखाते रहे कि हमारे मुल्क में ये भी होता था, ये है, एक दो लोग हैं, तो करते करते हो सकता है कि कभी हम उस लेवल को रीच कर जाए।
नहीं बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है कि हम इस वक्त सारंगी को बचाने के लिए ये सारा काम करें। और हम ज़ाती तौर पे भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो जान पहचान के लोग हैं पाकिस्तान में, जो मौसीकी की या परफॉर्मिंग आर्ट की किसी ना किसी तरह सरपरस्ती कर रहे हैं किसी इदारे की, उनसे भी इस बारे में बात की जाए। और आपने जो बात की है कि ज़्यादा करनी पड़ेगी तादाद, यानी वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं उनको कोई ऑनरेरियम देने का बंदोबस्त किया जाए पर मंथ उनको कुछ।
पहले तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा प्लान था कि पहले सारंगी कैसे आएगी, कि अगर मेरी एक बात सुने, सारंगी एक डबल जो ना वो टाइम मांगता है, जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हैं आपको 20,000 रुपया मंथली मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसको पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 30,000 के हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं। लेकिन सारंगी में ये होता जा रहा है कि सारंगी को 20 साल लग जाते हैं सीखते सीखते, लेकिन जब वो फील्ड में जाता है ना तो उसकी भी जो पेमेंट है या उसकी फीस वही है जो बाकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या बाकी लोग, और सारंगी में काम भी कम। बात समझ रहे ना मेरी मर्जी जो करना चाह रहा हूँ, मौके बहुत थोड़े हैं। जैसे कि मैं रेडियो पाकिस्तान में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ,
अच्छा,
तो मुझे पता कब इनवाइट करते हैं, जब उनके पास गजल आती है या कोई ठुमरी आती है तब मुझे इनवाइट करते हैं। मैं महीने में 2 या 3 दफा जाता हूँ, और जो वायलेंस कीबोर्ड ढोलक तबला जो गानों में इस्तेमाल होते हैं मोस्टली इंस्ट्रूमेंट, वो रोज काम करते हैं। तो ये बड़ा, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड भी होता हूँ कई भी दफा कि मैंने क्यों सीख लिया ये काम, लेकिन मैंने तो करना ही था। मेरे जो थी वो मेरे खानदान की जो है वो ट्रेडिशन को मैंने जिंदा रखना था, लेकिन ये चीजें जब तक फिगर आउट नहीं होंगी लोग नहीं आएंगे। अगर इसका कोई हल निकल आता है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे भी कुछ कजन है अभी छोटे हैं, कुछ वो भी आ सकते हैं, उनके पास सरंगियां पड़ी हैं, अच्छी पड़ी हैं।
सही सही।
लेकिन जब इन चीजों का हल निकल आएगा ना, तो फिर हो सकता है कोशिश।
जी यकीनन। और जो जो कमर्शियल लेवल पे भी है, देखिए हुकूमत तो शायद उस तरह से अपनी जिम्मेदारी आप जैसे बता रहे हैं कि पूरी नहीं कर पा रही, उसकी वजह ये है कि डिमांड कम हो गई है। तो उसके लिए पहले तो ये है कि सारंगी को उसका जायज़ मकाम आज के दौर में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना जितना खूबसूरत ये साज है, जितना मीठा ये साज है, उतनी ज़्यादा इसकी पसंदीदगी भी उतने ही बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। और वो ना होने की एक वजह ये भी है कि ये मादूम हो चुका है, लोगों को सुनने को ही नहीं मिल रहा, और जो चीज़ वो कहते हैं ना, आँख हो जल पहाड़ हो जल, तो इसके साथ ये वाला हिसाब हो गया। और खुदा ना करे
जी, सॉरी,
मैं ये कहना चाहता था कि खुदा ना करे कि सारंगी भी सरोद की तरह नापैद हो जाए, तो अल्लाह ना करे कि वो दिन आए पाकिस्तान की मौसीकी में कि हम इन साजों को और इन साजों के बजाने वालों को ढूंढें और हमें कोई मिले ना।
उस्ताद शफकत अली खान साहब, इस बारे में मैं उनके साथ बड़ा काम करता हूँ, सलामत अली खान साहब के बेटे के साथ, तो वो एक बात बड़ी प्यारी बताते हैं, हमेशा बात करते हैं, कहते हैं ये ना हो कि इस मुल्क में ये हाल हो जाए कि हमें सारंगी सितार सरोद या वोकल सीखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़े, कि जाओ अमेरिका चले जाओ और वहां से डिप्लोमा लेकर वहां जाके सीखो, ये ना हाल हो जाए कि हमारे इंस्ट्रूमेंट हमें बाहर से सीखने पड़ जाए।
درست. اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اوور آل بھی جو میوزک انڈسٹری ہے پاکستان کی اس میں بہت زوال آیا ہے؟ میں چونکہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ تو 2005 تک کا وقت ہے. 2005 تک کا ٹائم بڑا اچھا تھا, 90 کی دہائی اور پھر یہ جو آدھی دہائی 2005 تک جو میں نے دیکھی اس میں تو میوزک بہت پاپولر ہوا. میں نے ایک پچھلے دنوں ایک پوسٹ بھی دیکھی جو میری ایک کالیگ نے میرے ساتھ شیئر کی. پاکستان میں ایک بینڈ ہوا کرتا تھا آر او, اس کے ایک ممبر تھے جو کہ پاکستان میں میوزک چھوڑ کر اب نیو جرزی میں بیچارے ایک کنوینئنٹ اسٹور چلا رہے ہیں. تو میں بہت ہی اداس ہوا یہ صورتحال دیکھ کر. اور پھر چونکہ بات ہوتی رہتی ہے لوگوں سے پاکستان میں بھی, تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں موسیقی کی جو انڈسٹری ہے اس پر بہت زوال آ گیا ہے. ہمیں ویسے تو دیکھنے کو بڑی بڑی کچھ پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں, جیسے کوک اسٹوڈیو ہے یا چند ایک اکا دکا بہت بڑے بڑے نام ہیں میوزک کے جو کہ سامنے نظر آ رہے ہیں, لیکن نئے لوگ نہیں نظر آ رہے.
نہیں پتا کیا, ہمارا یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں نا,
جی
پہلے تو جتنے بھی آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہیں نا, میں نے ادھر کام کیا نا دوستی میوزک پروجیکٹ میں,
جی
تو ایک بات مجھے چینج یہ میں نے محسوس کی زندگی میں پہلی دفعہ کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو ہمارے باس بھی ہیں اور میوزیشین بھی ہیں. کہ جو ہمیں آرگنائز کر رہا ہے وہ خود آرٹسٹ ہے, اس کو پتا ہے کہ میوزیشین کی کیا لمٹ ہے, کس انسٹرومینٹ کی کیا حد ہے, اور وہ دوسرا میوزیشین کیا سوچ رہا ہوگا میں نے اس کو بلایا ہے تو اب اس نے یہ ماحول دیکھا ہے تو اس کے ذہن میں کون سا کوشچن ہے. لیکن ہمارے جو کچھ لیڈران ہیں آرگنائزیشن کے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ میوزیشینس کو صرف ورکر ہی سمجھتے ہیں, کہ جیسے کوئی, آپ میری بات سمجھ چکے ہیں
جی جی
جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ بڑی ایک,
یعنی اس کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جاتا, میوزیشن کو آرٹسٹ سمجھنے کے بجائے تنخواہ دار ملازم سمجھا جاتا ہے.
ملازم سمجھا جاتا ہے. اور وہی جو میں نے بات اٹھائی پاکستان میں سارنگی کی پیمنٹ کے بارے میں بھی,
جی
تو کچھ لوگوں نے ریڈیو پاکستان نے تو میرے ساتھ کوپریٹ کیا,
جی
لیکن ابھی کچھ آرگنائزیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ختم ہوتا جا رہا ہے, مجھے مہینے میں ایک پروگرام ملنا ہے,
جی
تو اگر مجھے اس میں بھی صحیح فیس نہ ملی میں تو بھوکا مر جاؤں گا.
ٹرو.
تو اس کے بارے میں کچھ کریں, لیکن وہ لوگ ابھی بھی ٹال مٹول کر دیتے ہیں, نہیں بات سمجھ رہے, یہ نہ اوکے بالکل, اگر کسی نے نہ سیکھی تو کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا.
ظاہری بات ہے ختم ہو جائے گا. اور اگر ختم ہو گیا تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی کو سیکھنا ہوگا تو اس کو پاکستان سے باہر ہی جانا پڑے گا.
جو قومیں اپنا کلچر نہیں بچا سکتی وہ قومیں خود کیا بچیں گی, جنہوں نے اپنے ثقافت کو نہیں بچایا, جو اتنا نہیں, لوگ تو جانور بچاتے ہیں یورپ میں امریکہ میں, وہ پرندے کی بھی ایک نسل ہوتی ہے نا نایاب, تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں ہر چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن ہمارے ملک کو شاید کب سمجھ آئے گی انشاءاللہ.
جی اچھا زہیب صاحب, اب وقت کم رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کچھ اپنے خیالات میں ہمیں یہ بتائیے کہ کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں, جیسے اگر میں کہوں کہ 1 2 3 کیا اسٹیپس ہونے چاہیے اس کو بچانے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے؟
سب سے پہلے تو جتنے بھی سرنگی نواز ہیں ان کو ان کی فیس ڈبل کرنی چاہیے باقی اسٹوڈینٹ سے, کیونکہ اگر ہمیں دگنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے ایک سارنگی سیکھنے کے لیے ایون کے اندر انسٹرومینٹ, تو ہمیں معاوضہ بھی ڈبل ملنا چاہیے.
صحیح,
پہلے معاوضہ ڈبل ملنا چاہیے اور ہمیں زیادہ کام ملنا چاہیے, کہ جیسے جو ہو سکتا ہے کہ جی ریڈیو میں اگر 10 گانے ہیں تو 10 میں ہی سارنگی ہونی چاہیے اور پھر اس کی پیمنٹ بھی ڈبل ہونی چاہیے. جب ہم خوشحال ہو جائیں گے نا سارنگی والے,
دو
سے تین لوگ پاکستان میں, تو لوگ آئیں گے, لوگ آئیں گے ادھر, وہ کہیں گے یار یہ خوشحال ہے, یہ مزے میں ہیں, تو کیوں نہ ہم بھی, ہمارے بچے کا بھی اچھا فیوچر ہوگا, اچھا فیوچر دیکھیں گے لوگ تو اس کے لیے سارنگی کے لیے آئیں گے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو زہیب صاحب میں جانے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کی ویب سائٹ میں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ کا اگر انٹرسٹ ہو, آپ کے آگے کسی جاننے والے کا انٹرسٹ ہو, تو زہیب حسن صاحب کی ویب سائٹ ہے جو کہ ہے zohaibhasanamritsari.com, اور اس پر جا کر آپ زہیب صاحب سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں, ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو استاد زہیب حسن خان کا ای میل بھی بتا دیتا ہوں, یہ ہے zohaibhasan.zebi@gmail.com, zohaibhasan.zebi@gmail.com. آپ کا اسکائپ کا رابطہ ہے zohaib.zebi1, یعنی zohaib.zebi1, ये आपका स्काइप का रबता है, आपका फोन नंबर मैं जानबूझ के नहीं बताना चाहता, ये ना हो ना आपको मिस्ड कॉलें आनी शुरू हो जाए और मैसेजेस आने शुरू हो जाए
जी
साउथ बाय साउथ में भी हमने परफॉर्म किया है ना, सबसे बड़ा दुनिया का म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है
जी जी जी,
तो उधर निकाल हसन बैंड भी थे, हम उधर सब लोगों से मिले, तो निकाल भाई ने भी एक ऐसा ही इंटरव्यू जैसे मैंने दिया उसने भी एक खड़का दिया इंटरव्यू ऐसा ही।
अच्छा जी अच्छा, तो मेरा ख्याल है एक मैसेज आया है, वो मैसेज बिलाल हमें बताना चाह रहे हैं, वो मैसेज भी सुनते हैं।
बिल्कुल, हमें ना मैसेज किया हुमा मिर्जा ने साहिवाल से, वो कह रही हैं कि शो नाइस है और इन्फॉर्मेटेड भी है, और कह रही हैं कि म्यूजिक को एज अ सब्जेक्ट स्कूल में भी होना चाहिए सरंगी को।
क्या बात है,
बिल्कुल
ये जबरदस्त चीज है कि सरंगी को पाकिस्तान की म्यूजिक हिस्ट्री में एज ए सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, जो लोग नहीं सीखना चाहते लेकिन उन्हें मालूम तो होना कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसी है, इसकी फिजिक्स ये है, इसकी लिमिट्स ये है, इसकी स्ट्रिंग इतनी है ये। और एक बड़ी मुनफरिद बात मैं बता चलूं कि हमारे खानदान में फोर फिंगर टेक्निक से सारंगी बजाई जाती है।
क्या
पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इवन के पाकिस्तान की फैमिली जिनका मैंने जिक्र किया गुलाम अहमद खान और बाकी दूसरी फैमिली, वो थ्री फिंगर टेक्निक से बजाते हैं।
बिल्कुल, और मैं अपने सुनने वालों को जाते जाते इसमें इजाफा ये करते भी बताता चलूं कि सारंगी वो वाहिद साज है जो उल्टी उंगली से बजाया जाता है, सीधी उंगली से नहीं बजाया जाता,
ये बाएं हाथ से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में।
बिल्कुल, और ये जो नाखून वाली साइड होती है उंगली की, उससे इसकी इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए भी ये बहुत ही मुश्किल साज है। बहरहाल जुहेब हसन खान साहब, आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा।
आपका, आपकी टीम का, वॉइस ऑफ अमेरिका का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने नाज़रीन का, अगर तुम मेरे से
नहीं नहीं खान साहब क्या
नहीं
नहीं नहीं नहीं क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लिसनर्स, ये थे उस्ताद जुहेब हसन खान, जो कि पाकिस्तान के चंद गिने चुने जो सारंगी नवाज रह गए हैं, सारंगी साज रह गए हैं, उनमें इनका शुमार होता है, और एक बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान की जो छोटी सी सारंगी की इंडस्ट्री है उसमें। और जाते जाते हमने आपके लिए एक सारंगी की धुन और भी प्ले करनी है, लेकिन उससे पहले बिलाल मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, गो के ज़्यादा बोला मैं, आप कम बोले, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि आप खामोशी से हमारी सारी गुफ्तगू सुनते रहे, और वो तमाम सुनने वाले जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बारे में कमेंट करना चाहें तो फेसबुक पर आकर आप अपना कमेंट मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और फेसबुक पर मेरी पेज आईडी है मोहम्मद आतिफ VOA, इस पेज पर आके आप अपनी राय इस प्रोग्राम के बारे में दे सकते हैं, और मैं उन लोगों के नाम भी प्रोग्राम में शामिल करता चलूं जिन्होंने आज के प्रोग्राम को पसंद किया है जी। उनमें शामिल हैं हमाद अरशद साहब और निमरा यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फेसबुक के जरिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। जाते जाते मैं आपके लिए सारंगी की एक बहुत ही खूबसूरत धुन प्ले करना चाहता हूं, जो कि जैसे हमने बात की थी अब से कुछ देर पहले अमृतसरी घराने की, तो अमृतसरी घराने का एक बहुत ही बड़ा नाम है उस्ताद हुसैन बख्श अमृतसरी, उन्होंने ये धुन प्ले की है जो कि है राग मलकौंस, जी मलकौंस, राग मलकौंस की ये धुन है। इसी के साथ आपको छोड़ता जा रहा हूँ मोहम्मद आतिफ को और बिलाल जट को, इजाजत दीजिए, प्रोग्राम आतिफ ऑन सनराइज से कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔